नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Not 3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। द एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल लर्निंग, डेटा माइनिंग, इन्फरेंस एंड प्रिडिक्शन का दूसरा संस्करण ट्रेवर हेस्टी, रॉबर्ट टिपशिरानी और जेरोम फ्रीडमैन की उन्नत पाठ्य पुस्तक है। यह सांख्यिकी, मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में प्रचलित तरीकों को एक साझा वैचारिक ढांचे में रखती है। पुस्तक का उद्देश्य केवल एल्गोरिदमों की सूची देना नहीं, बल्कि यह स्पष्ट करना है कि डेटा से उपयोगी अनुमान और पूर्वानुमान निकालते समय अलग अलग विधियां किन मूल समस्याओं का समाधान करती है। इसमें पर्यवेक्षित अधिगम के अंतर्गत प्रतिगमन और वर्गीकरण तथा अपरिवेक्षित अधिगम के अंतर्गत क्लस्टरिंग और आयाम घटाने पर विस्तार से चर्चा है। दूसरा संस्करण रैंडम फॉरेस्ट एनसेम्बल विधियां, लैसो के पथ एल्गोरिदम, ग्राफिकल मॉडल, स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग और वाइड डेटा जैसी आधुनिक चुनौतियों को भी शामिल करता है। इसका दृष्टिकोण सांख्यिकीय है, पर केंद्र में व्यावहारिक तर्क है, जैसे मॉडल की जटिलता, अनिश्चितता, त्रुटि का आकलन और नए डेटा पर प्रदर्शन। इसलिए यह क्षेत्र के सिद्धांत और अनुप्रयोग दोनों को जोड़ने वाली संदर्भ पुस्तक है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, पर्यवेक्षित अधिगम में पूर्वानुमान को मुख्य सांख्यिकीय समस्या के रूप में देखना। पुस्तक पर्यवेक्षित अधिगम को ऐसी स्थिति के रूप में स्थापित करती है जिसमें हमारे पास इनपुट चर और उनके ज्ञात परिणाम होते हैं। लक्ष्य केवल प्रशिक्षण डेटा में संबंध ढूंढना नहीं है, बल्कि नए, पहले ना देखे गए अवलोकनों के लिए परिणाम का विश्वसनीय पूर्वानुमान करना है। संख्यात्मक परिणाम होने पर समस्या प्रतिगमन की बनती है, जबकि श्रेणी या वर्ग का अनुमान लगाना वर्गीकरण है। यह भेद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों में त्रुटि की परिभाषा, निर्णय सीमा और प्रदर्शन मापने की विधि अलग हो सकती है। पुस्तक रैखिक मॉडलों से शुरुआत करके अधिक लचीले गैर रैखिक तरीकों तक जाती है। इस क्रम से पाठक समझता है कि सरल मॉडल की व्याख्या आसान और स्थिर हो सकती है, पर वह जटिल संबंध छोड़ सकता है। दूसरी ओर, बहुत लचीला मॉडल प्रशिक्षण नमूने की संयोगवश विशेषताओं को भी सीख सकता है। वर्गीकरण वृक्ष, सपोर्ट वेक्टर मशीन, न्यूरल नेटवर्क और बूस्टिंग जैसी विधियां अलग रूपों में इसी पूर्वानुमान समस्या को हल करती है। पुस्तक इन तरीकों को प्रतिस्पर्धी नामों वाले अलग शिविरों की तरह नहीं, बल्कि मान्यताओं, लचीलेपन और हानि के अलग चुनावों के रूप में पढ़ाती है। यह दृष्टि सही प्रश्न के लिए सही मॉडल चुनने का आधार देती है। दूसरा, बायस वेरियंस संतुलन और अति अनुरूपण की समस्या। इस पुस्तक का एक केंद्रीय विचार बायस वेरियंस संतुलन है। किसी मॉडल की औसत भविष्यवाणी वास्तविक संबंध से व्यवस्थित रूप से हटती है तो यह बायस है। प्रशिक्षण नमूना बदलते ही मॉडल का उत्तर बहुत बदल जाए तो यह वेरियंस है। अत्यंत सरल मॉडल अक्सर अधिक बायस रखते हैं, क्योंकि वे डेटा में मौजूद महत्वपूर्ण वक्रता या अंतःक्रिया को नहीं पकड़ते। अत्यधिक लचीले मॉडल कम प्रशिक्षण त्रुटि के बावजूद अधिक वेरियंस पैदा कर सकते हैं। यही अति अनुरूपण है, जिसमें मॉडल संकेत के साथ शोर को भी नियम मान लेता है। पुस्तक इस संतुलन को केवल सैद्धांतिक चेतावनी नहीं मानती, बल्कि इसे मॉडल चयन के व्यावहारिक केंद्र में रखती है। नियमितीकरण, स्मूदिंग, प्रूनिंग, पड़ोस के आकार का चुनाव और एनसेम्बल निर्माण सभी जटिलता को नियंत्रित करने के उपाय हैं। उदाहरण के लिए, लैसो गुणांकों को संकुचित कर कुछ चरों को शून्य तक ला सकता है, जबकि वृक्ष की छंटाई अनावश्यक विभाजनों को हटाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वोत्तम मॉडल वह नहीं जो उपलब्ध डेटा को सबसे ठीक दोहराए, बेहतर मॉडल वह है जिसकी अनुमानित परीक्षण त्रुटि कम हो। इस विचार से पाठक मॉडल की चमकदार जटिलता के बजाय उसकी सामान्यीकरण क्षमता का मूल्यांकन करना सीखता है। तीसरा, क्रॉस वैलिडेशन। बूटस्ट्रैप और ईमानदार मॉडल मूल्यांकन, डेटा आधारित निर्णय में सबसे कठिन प्रश्न अक्सर यह नहीं होता कि मॉडल कैसे फिट करें, बल्कि यह होता है कि उसके प्रदर्शन पर भरोसा कैसे करें। पुस्तक प्रशिक्षण त्रुटि और परीक्षण त्रुटि का स्पष्ट अंतर बताती है। जिस डेटा पर मॉडल बनाया गया हो, उसी पर उसका मूल्यांकन करने से परिणाम प्रायः जरूरत से अधिक अच्छे दिखते हैं। क्रॉस वैलिडेशन इस समस्या के लिए डेटा को बार बार प्रशिक्षण और मान्यकरण भागों में बांटकर परीक्षण त्रुटि का अनुमान देता है। इससे नियमितीकरण की मात्रा, वृक्ष का आकार, पड़ोसों की संख्या या अन्य ट्यूनिंग विकल्पों का चयन किया जा सकता है। बूटस्ट्रैप पुनःनमूनाकरण के माध्यम से किसी अनुमान की अनिश्चितता, स्थिरता या परिवर्तनशीलता को समझने का उपकरण है। पुस्तक यह भी दिखाती है कि मॉडल तुलना में केवल एक अंक पर्याप्त नहीं होता। डेटा की मात्रा, चरों की संख्या, वर्गों का असंतुलन और चयन की पूरी प्रक्रिया निष्कर्ष की विश्वसनीयता बदल सकते हैं। यदि फीचर चयन को मान्यकरण से पहले पूरे डेटा पर कर लिया जाए तो मूल्यांकन में सूचना का रिसाव हो सकता है। इसलिए आकलन की प्रक्रिया को भी मॉडल निर्माण का हिस्सा मानना चाहिए। यह अध्यायों में फैला अनुशासन व्यावहारिक डेटा विज्ञान के लिए विशेष उपयोगी है, क्योंकि यह पाठक को प्रभावशाली प्रशिक्षण परिणाम और वास्तविक भविष्यवाणी क्षमता के बीच अंतर पहचानना सिखाता है। चौथा, वृक्ष बूस्टिंग और रैंडम फॉरेस्ट से एंसेम्बल की शक्ति। पुस्तक निर्णय वृक्षों को ऐसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती है जो डेटा को क्रमिक नियमों के आधार पर क्षेत्रों में बांटते हैं। वृक्षों की व्याख्या सहज होती है, क्योंकि वे प्रश्नों की श्रृंखला जैसे दिखते हैं, फिर भी अकेला वृक्ष अस्थिर हो सकता है। डेटा में छोटा बदलाव भी विभाजन और अंतिम भविष्यवाणी बदल सकता है। इसी सीमा से एंसेम्बल विधियों की आवश्यकता उभरती है। बैगिंग अनेक पुनःनमूनों पर मॉडल बनाकर उनके उत्तरों का औसत लेती है, जिससे वेरियंस घट सकता है। रैंडम फॉरेस्ट इसमें हर विभाजन पर चरों के यादृच्छिक उपसमूह को जोड़ता है, ताकि अलग वृक्ष बहुत समान न बने। बूस्टिंग का तर्क अलग है, यह मॉडल को चरणों में बनाता है और पहले के मॉडल की कठिन या गलत भविष्यवाणियों पर अधिक ध्यान देता है। इस तरह अनेक अपेक्षाकृत सरल शिक्षार्थियों का क्रम एक शक्तिशाली पूर्वानुमानक बन सकता है। पुस्तक की खासियत यह है कि वह इन विधियों को केवल उच्च सटीकता वाले उपकरणों के रूप में नहीं दिखाती, वह उनके पीछे मौजूद हानि फलन, जटिलता नियंत्रण, ओवरफिटिंग और व्याख्येता के सवाल भी उठाती है। फलतः पाठक समझ पाता है कि एंसेम्बल का लाभ विविध, आंशिक रूप से त्रुटिपूर्ण मॉडलों की त्रुटियों को संतुलित करने से आता है, न कि किसी एक सार्वभौमिक एल्गोरिदम से। अंत में, अपरिवेक्षित अधिगम, उच्च आयाम और वाइड डेटा की चुनौतियां, हर उपयोगी डेटा समस्या में लक्ष्य चर उपलब्ध नहीं होता। मामलों में अपरिवेक्षित अधिगम डेटा की आंतरिक संरचना खोजने का प्रयास करता है। क्लस्टरिंग समान अवलोकनों के समूह बना सकती है, जबकि प्रिंसिपल कंपोनेंट्स जैसे आयाम घटाने के तरीके अनेक चरों में परिवर्तन के प्रमुख स्रोतों को संक्षेप में दिखाते हैं। पुस्तक सावधान करती है कि ऐसे परिणाम स्वतः अंतिम सत्य नहीं होते, समूहों की संख्या, दूरी का माप और डेटा का स्केल बदलने पर निष्कर्ष बदल सकता है। इसलिए संरचना की व्याख्या विषय ज्ञान और वैकल्पिक जांच के साथ करनी चाहिए। दूसरा संस्करण खास तौर पर वाइड डेटा पर ध्यान देता है, जहां चर या विशेषताएं अवलोकनों से अधिक होती है। इस स्थिति में साधारण अनुमान अस्थिर हो सकते हैं और अनेक संभावित संबंध संयोग से महत्वपूर्ण दिख सकते हैं। नियमितीकरण, लैसोपथ, बहुपरीक्षण और फॉल्स डिस्कवरी रेट जैसी अवधारणाएं इस जोखिम को संभालने में सहायक है। नॉन नेगेटिव मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन और स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग जैसे विषय यह भी दिखाते हैं कि संरचना खोजने के कई गणितीय रास्ते हैं। इस भाग का मुख्य सबक है कि उच्च आयाम में पैटर्न देख पाना पर्याप्त नहीं, यह जानना जरूरी है कि पैटर्न डेटा निर्माण प्रक्रिया, मापन, चयन और संयोग से किस हद तक प्रभावित हो सकता है। निष्कर्ष में, द एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल लर्निंग उन पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनके पास प्रायिकता, सांख्यिकी, रैखिक बीजगणित और गणितीय तर्क की कुछ पूर्व तैयारी है। यह उन्नत स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, सांख्यिकी विदों तथा ऐसे डेटा वैज्ञानिकों के लिए उपयोगी है जो केवल तैयार सॉफ्टवेयर चलाने के बजाय विधियों के पीछे के कारण समझना चाहते हैं। व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक पूर्वानुमान समस्या को सही ढंग से परिभाषित करना, मॉडल जटिलता नियंत्रित करना, मान्यकरण द्वारा विकल्प चुनना और अनिश्चितता के प्रति सावधान रहना सीखता है। बौद्धिक लाभ इससे भी व्यापक है। पुस्तक बताती है कि प्रतिगमन, वर्गीकरण, वृक्ष, सपोर्ट वेक्टर मशीन, न्यूरल नेटवर्क और एंसेम्बल जैसी भिन्न दिखने वाली विधियां अक्सर हानि, नियमितीकरण, प्रतिनिधित्व और सामान्यीकरण के साझा प्रश्नों से जुड़ी है। इसी एकीकृत दृष्टि के कारण यह सामान्य मशीन लर्निंग परिचयों से अलग खड़ी होती है। कई पुस्तकें किसी एक लाइब्रेरी, कोडिंग भाषा या तुरंत लागू होने वाले नुस्खों पर केंद्रित होती है। यह पुस्तक अपेक्षाकृत कम उपकरण केंद्रित और अधिक सिद्धांत समर्थित है। फिर भी इसका उद्देश्य अमूर्त गणित में खो जाना नहीं, बल्कि सांख्यिकीय निर्णयों के परिणाम समझाना है। इसकी व्यापकता और घनत्व के कारण इसे त्वरित शुरुआती पाठ के बजाय दीर्घकालीन संदर्भ ग्रंथ की तरह पढ़ना अधिक उचित है। जिन पाठकों को आरंभिक स्तर की सहज भूमिका चाहिए, वे पहले सरल परिचय से आधार बनाकर इस पुस्तक से अधिक लाभ ले सकते हैं। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं, ट्रेवर हैस्टी, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।